धातु का वाच्य व्यापार अगर नहीं मानेंगे तो दो आपत्तियां जो है पहले बताई गई हैं, अब तीसरी आपत्ति यहाँ बताई जा रही है अपिच से कि अपिच भावनाया अवाच्यत्व, भावना में यदि अवाच्यत्व होगा अर्थात व्यापार अगर वाच्य नहीं होगा धातु का तो सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभाग उच्छिन्न स्यात्। तो धातुओं में जो विभागजन होता है कि ये धातु सकर्मक है ये धातु अकर्मक है, इस तरह का जो विभाजन है उसी को कहते हैं सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभाग। यह जो विभाग है विभाजन है यह उच्छिन्न स्यात्, उच्छिन्न होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा। कैसे बिगड़ने लगेगा अगर हम भावना को वाच्य नहीं मानेंगे तो कहा कि सकर्मक और अकर्मक का लक्षण शास्त्र में ये बताया गया है कि स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, और स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्व नहीं, एक ही चीज है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने बोला है स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम, और स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्वम व सकर्मकत्वम। पहले वाले में क्या है फल को पहले रखा है और व्यापार को बाद में, और दूसरे वाले में व्यापार को पहले रखा है और फल को बाद में रखा है, बाकी सेम है। तो कहा कि ये लक्षण बताया जाता है सकर्मक धातु का लक्षण, ये लक्षण जो है भावना अगर वाच्य नहीं मानेंगे तो किसी भी धातु में ये लक्षण जाएगा ही नहीं, और जब लक्षण नहीं जाएगा तो कोई भी धातु सकर्मक नहीं कहलाएगी। आप जानते हैं कि जब किसी में लक्षण जाता है तभी वह लक्ष्य कहलाता है, जैसे गो का लक्षण है गोत्व, तो गोत्व जिसमें रहेगा वही गो कहलाएगा, ऐसे ही सकर्मकत्व जिसमें रहेगा वही सकर्मक कहलाएगा, और सकर्मकत्व का जो ये लक्षण है स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व अथवा स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्व, ये वाला लक्षण जो है सकर्मकत्व किसी धातु में जाएगा ही नहीं तो फिर वह धातु सकर्मक नहीं कहलाएगी। इस तरह से ये जो सकर्मकत्व अकर्मकत्व का विभाग है वह उच्छिन्न हो जाएगा, वह विभाजन जो करना है वह उसका रूल जो है वह बिगड़ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये क्या है स्वार्थ फल व्यधिकरण, बड़ा भारी भरकम सुनने में लगता है। तो ऐसा है कि जब तक व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है तब सब कुछ कठिन लगता है, और एक बार मालूम हो जाने के बाद ना सब आसान ही लगने लगता है। तो मुझे किसी ने पूछा कि शास्त्र में कौन सा शास्त्र कठिन है कौन सा शास्त्र सरल है, तो मैंने यही बताया कि जो शास्त्र आप जान लेते हैं वो सरल है आपके लिए, जो नहीं जानते रहते हैं वो आपके लिए कठिन है, ऐसे साथ सब एक ही जैसा होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए आप दो शब्द को समझना जरूरी है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। अधिकरण समान हो तो समान अधिकरण, अधिकरण भिन्न भिन्न हो तो व्यधिकरण। ये अधिकरण क्या होता है, अधिकरण होता है कि जिस जगह पर कोई रहता है, जैसे मान लीजिए पॉकेट में कलम रहती है तो कलम का अधिकरण हो जाएगा पॉकेट, घड़ा जो है जमीन पर रखी हुई है तो जमीन जो है वह घड़ा का हो जाएगा अधिकरण। तो अधिकरण कहते हैं स्थान को, जिस स्थान पर कोई बैठता है या जिस स्थान में कोई रहता है वह अधिकरण हुआ, ठीक है। तो अब धातु का के दो वाच्य हैं फल और व्यापार, तो फल का अधिकरण और व्यापार का अधिकरण अगर समान हो, ऐसा कब होगा जब एक ही अधिकरण में फल भी बैठेगा और एक ही अधिकरण में व्यापार भी बैठेगा तो वहां पर समानाधिकरण फल व्यापार होगा, ठीक है। अगर भिन्न भिन्न अधिकरण में अलग अलग अधिकरण में फल व्यापार बैठेगा तो वहां पर व्यधिकरण फल व्यापार होगा, जैसे फल किसी और अधिकरण में बैठा हुआ है और व्यापार किसी और अधिकरण में बैठा हुआ है तो वह हो गया फल व्यधिकरण व्यापार। अगर एक ही अधिकरण में समान ही अधिकरण में फल भी बैठा है और व्यापार भी बैठा है तो वह हो गया फल समानाधिकरण व्यापार। ये शब्द तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसको मैं उदाहरण पर आपको समझाता हूँ। जैसे देवदत्तः तंडुलम पचति, इसमें पच धातु जो है उसके दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। फल है विकलित्ति और व्यापार, उसमें अनुकूलक तो संबंध होता है, तो क्या हो गया फलानुकूलक व्यापार अर्थ हुआ पच धातु का। अनुकूलत को अभी साइड कर दीजिए, फल और विकलित्ति और व्यापार, ये दो अर्थ हैं पच धातु के, विकलित्ति फल और व्यापार। अब देखिए कि देवदत्ता तंडुलम पचति में फल का अधिकरण कौन है और व्यापार का अधिकरण कौन है, मतलब फल किस में रहता है और व्यापार किस में रहता है। तो देखिए फल जो विकलित्ति है, विकलित्ति जानते हैं ना आप, कोमलता है, किस कठोर वस्तु का मुलायम हो जाना जो है वही है विकलित्ति। तो देवदत्ता तंडुलम पचति में पच धातु का जो फल है विकलित्ति, वो विकलित्ति किस में बैठेगी, तंडुल में बैठेगी कि देवदत्त में बैठेगी। पकने पर तंडुल कोमल होता है कि रसोईया जो देवदत्त है वो कोमल होता है, साफ है तंडुल कोमल होता है। तो फल जो विकलित्ति है उसका अधिकरण कौन होगा, तंडुल। और फलानुकूल व्यापार जो है वह व्यापार किस में बैठेगा, उस व्यापार को कौन करेगा, तंडुल करेगा कि देवदत्त करेगा, देवदत्त करेगा। तो व्यापार बैठेगा किस में, देवदत्त में। और विकलित्ति रूप फल जो है वो बैठेगा किस में, तंडुल में। इस तरह से फल का अधिकरण तंडुल भिन्न है और व्यापार का अधिकरण देवदत्त जो है वह भिन्न है। तो इसी को कहते हैं फल व्यधिकरण व्यापार, माने फल के अधिकरण से भिन्न अधिकरण में रहने वाला व्यापार जो होता है वही होता है फल व्यधिकरण व्यापार। और एक होता है फल समानाधिकरण व्यापार। इसका उदाहरण समझ लीजिए कि शिशु क्रंदति, बच्चा रोता है। यहाँ पर क्रंदति रोदिति कुछ भी कह सकते हैं। तो क्रंदति में क्रदी धातु है, क्रदी धातु के भी दो अर्थ होंगे, फल और व्यापार। फल जो है उसका होगा क्रंदन और तदनुकूल व्यापार, तो क्रंदनानुकूल व्यापार। अब यहाँ देखिए कि क्रंदन कौन, क्रंदन किस में रहेगा, शिशु में रहेगा। और क्रंदन के अनुकूल व्यापार भी किस में रहेगा, शिशु में ही रहेगा। तो एक ही अधिकरण जो शिशु है उसी में क्रंदन फल भी रह गया और क्रंदनानुकूल व्यापार भी रह गया। तो यहाँ का जो फल व्यापार है वो कहलाएगा फल समानाधिकरण व्यापार। इसी तरह से दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे घटः अस्थि। तो घटः अस्थि में अस धातु है, अस धातु का अर्थ होता है सत्ता। तो इसका अगर फल व्यापार के की दृष्टि से अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा सत्तानुकूल व्यापार। अब देखिए कि सत्ता रूप फल जो है वह किस में रहेगा, घट में रहेगा। असत्तानुकूल व्यापार भी किस में रहेगा, घट में रहेगा। तो समान अधिकरण में फल व्यापार रह गया, इसलिए ये कहलाएगा फल समानाधिकरण व्यापार। आप समझने के लिए समझ लीजिए कि जहाँ पर फल व्यधिकरण व्यापार रहता है उसको हम सकर्मक कहते हैं, जहाँ पर फल समानाधिकरण व्यापार रहता है उसको हम अकर्मक कहते हैं। ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। अब हम ग्रंथ की पंक्ति पर चलते हैं। ग्रंथ में ये बताया गया था कि अगर हम व्यापार अर्थ धातु का नहीं मानेंगे तो सकर्मकत्व अकर्मत्व का जो विभाग है वह बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने सकर्मक के लक्षण में फल को भी पकड़ा है और व्यापार को भी पकड़ा है, तो दोनों को पकड़ करके हमने लक्षण किया। यदि हम आप केवल फल अर्थ मानेंगे तो व्यापार कहाँ जाएगा, हमने तो दोनों को मिला करके लक्षण किया ना सकर्मक का, कि फल व्यधिकरण व्यापार अगर है तो सकर्मक है और फल समानाधिकरण व्यापार है तो अकर्मक है। ये लक्षण कब साधु हो सकता है, सही हो सकता है, जब हम फल अर्थ भी माने व्यापार अर्थ भी माने, तभी ना फल व्यधिकरण व्यापार की समीक्षा होगी, परीक्षा होगी कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। आप केवल फल ही अर्थ मानेंगे तो ये फल व्यधिकरण व्यापार वाला जो हमने लक्षण किया है सकर्मकत्व का, ये लक्षण तो कहीं जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो धातु सकर्मक नहीं कहलाएगी, अकर्मक नहीं कहलाएगी। अब पंक्ति को देखें, यहाँ लिखा है स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व। स्व से यहाँ पर धातु को लेना है, स्व अर्थ माने धातु अर्थ, तो धातु का अर्थ फल जो होता है वो धातु का अर्थ ही होता है, तो इसलिए उसको स्वार्थ फल कहा, माने धात्वर्थ फल कहा। तो धात्वर्थ फल के व्यधिकरण में जो व्यापार है, माने भिन्न अधिकरण को व्यधिकरण कह, भिन्न अधिकरण में रहने वाले को व्यधिकरण कहा जाता है। तो धातु अर्थ फल के भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार का जो वाचक होगा, बोधक होगा, वह सकर्मक होगा, और वाचकत्व जो होगा उस व्यापार का, वही सकर्मकत्व होगा। इस तरह से ये जो लक्षण है, ये लक्षण तभी किसी में धातु में जा सकता है जब हम फल अर्थ भी माने और व्यापार अर्थ भी माने। कहा कि और दूसरा भी, अगर व्यापार को पहले ले लें, फल को बाद में ले लें, तो क्या होगा? स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्वम, कि स्व का स्व मतलब धातु, स्वार्थ मतलब धातु का अर्थ, और व्यापार जो है वो धातु का अर्थ व्यापार है। तो स्वार्थ व्यापार के व्यधिकरण फल का, माने विरुद्ध अधिकरण में रहने वाले फल का जो वाचक होगा वह सकर्मक होगा, वाचकत्व जो है वह सकर्मकत्व है। इस तरह से यह जो सकर्मकत्व है, यह जो सकर्मक का लक्षण है, ऐसा है ना, सकर्मक के लक्षण को ही सकर्मकत्व कहते हैं और अकर्मक के लक्षण को अकर्मकत्व कहते हैं। सकर्मक होती है धातु, वही है लक्ष्य, और लक्ष्य में लक्षण जाता है। तो सकर्मक है धातु, उसमें सकर्मकत्व रूप जो लक्षण है वह जाएगा। इसी तरह से बाकी अकर्मक में भी समझ, अकर्मक है धातु, अकर्मकत्व, अकर्मक है धातु लक्ष्य, और अकर्मकत्व है लक्षण। तो अकर्मकत्व जिस धातु में जाएगी वह अकर्मक कहलाएगा, सकर्मकत्व जिस धातु में जाएगी वह सकर्मक कहलाएगा। और यह इस तरह का जो सकर्मकत्व अकर्मकत्व है, माने स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व रूप जो सकर्मकत्व है, यह जिस धातु में रहेगा वह सकर्मक कहलाएगा। और स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व, हमने व्यधिकरण हटा करके समानाधिकरण जोड़ दिया अपनी ओर से, तो स्वार्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व रूप जो अकर्मकत्व है वह जिसमें रहेगा धातु में, वह अकर्मक कहलाएगा। इस तरह की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था नष्ट हो जाएगी अगर हम केवल फल अर्थ मानेंगे, व्यापार अर्थ नहीं मानेंगे। वही कहा कि भावनायाः वाच्यत्वम् अन्तरेण असंभवी, कि भावना को जब तक हम वाच्य नहीं मानेंगे, अर्थ नहीं मानेंगे धातु का, तब तक अंतरेण माने बिना असंभवी। इस तरह से व्यवस्था जो है सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था, विभाजन वह असंभवी होगा, असंभव होगा, नहीं हो पाएगा। इस पर जो है एक प्रतिपक्षी जो है वह एक तर्क दे रहा है कि ऐसा है कि ये वाला हम लक्षण करेंगे, स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व, तो यह विभाग उच्छिन्न होगा, व्यवस्था बिगड़ेगी। ऐसा हम ये लक्षण करेंगे नहीं, हम ये दूसरा लक्षण करेंगे। क्या करेंगे कि तमाम सकर्मक धातुओं को एक जगह गिन लेंगे, और गिन करके कहेंगे कि अन्यतमत्वम सकर्मकत्वम, माने इन धातुओं में से जो अन्यतम है, मैंने एक दिन बताया था आपको कि दो में से एक को अगर अलग करना हो तो उसको अन्यतर कहते हैं, और बहुत में से एक को अलग करना हो तो उसको अन्यतम कहते हैं। दो में से एक अलग करने पर तरप प्रत्यय होता है, और बहुत में से एक अलग करने पर तम प्रत्यय होता है। तो वही कहा कि अन्यतमत्वम तत्वम, इस तरह से भी लक्षण आप नहीं कर सकते। ये जो कहा प्रतिपक्षी ने कि हम सकर्मक धातुओं की गिनती करके और लास्ट में लगा देंगे कि एतेषु अन्यतमत्वम सकर्मकत्वम, कि इनमें जो अन्यतम है वह सकर्मक है, और ऐसा लक्षण करेंगे तो ये लक्षण तो उस धातु में चला ही जाएगा जो सकर्मक धातुएं रहेंगी। तो इस तरह से व्यवस्था बन जाएगी। उसके लिए कहा व्याकरणों ने कि इति चेत न, कि ऐसा आप जो है समाधान नहीं दे सकते, ऐसा उत्तर नहीं कर सकते। क्यों? कि एकस्येव अर्थ भेदेन अकर्मकत्व सकर्मकत्व दर्शनार्थ, ताकि ये व्यवस्था अन्यतमत्वम सकर्मकत्वम वाली जो व्यवस्था है, ये तब संभव होगी जब धातु का एक ही अर्थ होता हो। अब यहाँ पर क्या है वास्तविक स्थिति, कि कई धातुएं ऐसी हैं जो धातु तो एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं, और किसी अर्थ में वही धातु सकर्मक बन जाती है और किसी अर्थ में वही धातु अकर्मक बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने जो व्यवस्था दी है अन्यतमत्वम तत्वम, उसमें तो केवल आपने धातु को गिनाया है, अर्थ को तो गिनाया है नहीं, कि इस अर्थ में ये धातु, इस अर्थ में ये धातु, इस अर्थ में ये धातु, और फिर कहेंगे येसु अन्यतमत्वम सकर्मकत्वम, ये तो आपने कहा नहीं, आपने सीधे धातु को गिना दिया और कहा कि इनमें से जो एक एक धातु है वह सकर्मक है। तो ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक ही धातु जो है वह किसी अर्थ में सकर्मक बन जाती है और किसी अर्थ में अकर्मक बन जाती है। वही कहा एकस्येव धातु हो अर्थ भेदेना अकर्मकत्व सकर्मकत्व दर्शनात्, एक ही धातु जो है वह अर्थ भेद होने से सकर्मक और अकर्मक बन जाया करती है, ऐसा जो है संस्कृत भाषा में देखा जाता है। अब इसको मैं उदाहरण पर आपको समझाता हूँ। एक है बह धातु, बह धातु का लट लकार में प्रयोग होता है बहती, तो बहती में बह धातु के दोनों अर्थ होते हैं, एक होता है ढोता है और एक होता है बहता है। जैसे नदी बहती यहाँ पर बहना अर्थ है और भारम बहती यहाँ पर ढोना अर्थ है। तो जब हम बहना अर्थ करते हैं तो बह धातु अकर्मक रहती है और जब ढोता है अर्थ करते हैं बहती में तो फिर वह सकर्मक बन जाती है। इसलिए देखिए भारम बहती, भारम कर्म है ना, द्वितीया लगी हुई है, यहाँ सकर्मक बह धातु है भारम बहती में, और नदी बहती में द्वितीया नहीं है, कर्म नहीं है, वह नदी करता है नदी बहती, क्योंकि यहाँ अकर्मक धातु बन जाती है। तो मान लीजिए आपने सकर्मक धातुओं को गिन करके कहा कि येसु अन्यतमत्वम सकर्मकत्वम, तो आप बह धातु को भी वहाँ गिनेंगे कि बह धातु भी सकर्मक है, लेकिन आप देखा आपने कि भारम बहती में बह धातु सकर्मक रहती है और नदी बहत में बह धातु अकर्मक हो जाती है। तो आप अगर अन्यतमत्वम तत्वम कह करके भी अगर सकर्मकत्व कर्मकत्व विभाग चलाना चाहें, व्यवस्था देना चाहें, तो वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही अर्थ, एक ही धातु का अर्थ भेद से सकर्मकत्व भी होता है और अकर्मकत्व भी होता है। ताकि इन्हीं सब बातों को मन में रख करके पहले जो एक कारिका आई थी कि क्रियो कर्मकता पत्ते है नहीं यत्नोर्थ इष्यते, ये लाइन जो बताई गई है कारिका के उत्तरार्ध में, ये इन्हीं सब बातों को मन में रख करके ये लाइन बताई गई है कि क्रियो कर्मकता पत्ते है नहीं यत्नोर्थ इष्यते। वही कहा तदेतत अभिसंधाय, माने इन्हीं सब बातों का अभिसंधान करके माने विचार करके आह कहा है कारिका में क्रियो इति, माने क्रियो कर्मकता पत्ते नहीं यत्नोत इस्यते, इस बात को कहा है। अब ये जो पंक्ति है क्रियो कर्मकता पत्ते नहीं यत्नोत इस्यते, इसकी व्याख्या आगे अयम भाव से ग्रंथकार कोंड भट्ट करेंगे, जिसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।